Hare Krishna.
Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की
जय।
श्री श्री गौर निताय भगवान की
जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय पांच
श्लोक संख्या पांच।
श्री प्रहलाद उवाच तत् साधु मन्ये असुरवरिया देहिना सदा समुद्विग्नः धिया असद्ग्राहात् हित्वा आत्मपातं गृहं अन्धः कुपं। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। हित्वात्मपापं गृहमन्धकूपं हित्वात्मपापं गृहमन्धकूपं वनं गतो याद हरिं आश्रयेत् वनं गतो याद हरिम् आश्रयेत् श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा तत् वह साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश मन्ये मानता हूँ असुरवरिया हे असुरों के राजा देहिना शरीरधारियों का सदा सदैव समुद्विग्न चिंताओं से पूर्ण धिया जिसकी बुद्धि असद्ग्राहत क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंधियों का हित्वा त्याग कर आत्मपातम स्थान जहां जाकर आत्म साक्षात्कार रुक जाता है ग्रहम देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन अंधकूपम जो मात्र अंधा कुआं है जहां जल नहीं होता फिर भी लोग जल की आशा करते हैं। वयम जंगल में गतः जाकर
यात जो हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय शरण ग्रहण करता है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है, मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। बागीश्यायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगतधाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकचौनक भीष्मदालभ्यं रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतान्नमान। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। तो आज परम पवित्र दिवस है। आज द्वादशी महोत्सव है और उस पर भी हमारी प्रिया जी का आज जन्मदिवस है, रुक्मणी जी का जन्मदिन है। इसका स्मरण तो दास को था नहीं, आदरणीय संत ठाकुर ने इसका स्मरण करवा दिया। तो आज द्वादशी उत्सव है, हम सभी वैष्णवगण का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे परम पवित्र दिन में, वो भी भगवान के सानिध्य में, ठाकुर जी के समक्ष कुछ कहने का, सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज द्वादशी है तो प्रत्येक वैष्णव कल एकादशी व्रत किए हैं। वैष्णव जीवन में तीन निष्ठाएं होती है, हर एक वैष्णव को ये तीन निष्ठाएं ठान लेना चाहिए, किसी भी कीमत पर ये तीन निष्ठाएं कभी भंग न होवे। जो सही में भगवान से प्रेम करना चाहता है, जो आखिर में ठाकुर जी से प्रीत करना चाहता है, उसके जीवन में तीन निष्ठाएं होनी चाहिए। प्रथम निष्ठा है, ये अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आता है भागवतम में। प्रथम निष्ठा है भगवान के नाम के प्रति अटूट श्रद्धा, नाम रुचि। दूसरा निष्ठा है तुलसी महारानी के प्रति प्रीत। प्रत्येक दिन सवेरे पहले वृंदा देवी का स्तवन गान करे, जल समर्पण करे और उसके उपरांत स्वयं जल ग्रहण करे, बाकी कार्य करे। तीसरा निष्ठा है एकादशी व्रत का प्रति निष्ठा। यदि किसके जीवन में यह तीन निष्ठाएं हैं, भगवान का पता लगाने उसे नहीं जाना पड़ेगा कहीं, भगवान स्वयं उसका पता लगाते हुए उसके द्वार पर पहुंच जाएंगे। प्रथम तीन निष्ठाएं। एकादशी की निष्ठा के ऊपर आपके इसी महाराष्ट्र की ही घटना है। सभी व्रतों का राजा है, सार है, शास्त्र में बताया जाता है एकादशी। रूप गोस्वामी पाद जी ने भी कहा है एकादशी के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी का तात्पर्य तो यह होता है निर्जला। एकादशी का अर्थ होता है जल नहीं ग्रहण करना है, पूरी रात्रि जागरण करना है। कई विधि, बहुत लंबा नियम बताया जाता है पुराणों में एकादशी का। ना क्रोध करना है, ना द्वेष करना है, ना झूठ बोलना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, दूसरे का बिस्तरा पर बैठना लेटना नहीं है और पूरा निर्जला होता है। भगवान नाम का संकीर्तन पूरे 24 घंटा होना चाहिए। द्वादशी के दिन इसका पारण होना चाहिए, यह होता है एकादशी। और यदि निर्जला नहीं होता तो कम से कम सजला कर, जल पी करके। और यदि जल पी के भी नहीं होता, दूध दही ग्रहण करे, वो भी भारतीय देसी गाय के दूध दही होना चाहिए। और यदि उसे भी नहीं होता, फलाहार कर ले, एक बार नहीं तो दो बार फलाहार कर ले, परंतु एकादशी होना चाहिए। बस यही लास्ट है, और आगे परमिशन नहीं है। और आज एकादशी कैसे होता है, 10 दिन पहले मेनू बनता है, अगले एकादशी को क्या बनेगा। और कोई कोई तो ऐसे संत महात्मा होते हैं, एकादशी कहते कि हम तो बस सजला करते हैं, फोन करते माता जी आज हमारे एकादशी है, आपको पता है ना, आपको जूस लानी है। अरे प्रभु जी हम भूले नहीं, समय पर जूस आ जाती है। महात्मा जी बैठे बैठे आश्रम में, आप दूसरे को फोन करते, प्रभु जी आपको पता है ना, आपके सेवा है एकादशी को, हम अन्न इत्यादि ये सब नहीं, साबुदाना भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो आप, हम फलाहार करते हैं, आप जूस। बोले कि प्रभु जी हमें याद है, हम भले आएंगे, समय पे पहुंच जाएगा। महाराज इतने जूस, इतने फलाहार वो कर लेता है कि अब उसके पेट में जगह ही नहीं। और क्या कहता, हम तो निर्जला करते हैं, हम तो बस जूस पिए हैं, हम और कुछ खाते नहीं है। इतने तुम जब खा ही लिए हो, जगह कहाँ है, और क्या खाना चाहिए। जानते हैं एकादशी व्रत खंडित कब होता है, चाहे आप एकादशी के भी पदार्थ क्यों ना ग्रहण किए हो, यदि डकार आ गया तो एकादशी गया। इतनी कम से कम आहार लेनी चाहिए, एकादशी पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, डकार ना आवे। डकार आ गया, उदर तुष्ट हो गया तो एकादशी व्रत खंडित हो गया, एकादशी नहीं माना जाएगा। एक बार इस प्रसंग के ऊपर, एकादशी के ऊपर चर्चा हो रहा था दिल्ली में, हम कर रहे थे पार्थ सारथी के प्रांगण में। एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी आपने ऐसे कैसे कहा, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा नियम बनाया है, साबूदाना इत्यादि ये सब खाते हैं, हमने मना कर दिया, कहा कि नहीं ये साबूदाना भी एकादशी में वर्जित है, नहीं चलता। आप जाएंगे स्कंद में भी पालन किया जाता है इस नियमों का, नहीं होता साबूदाना वगैरह। गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर, वो उपवास में नहीं आता वास्तव में देखा जाए। कैसे बनता है साबूदाना जब आप देखेंगे तो उपवास में नहीं आता, और समा चावल वो तो चावल ही एक प्रकार से। हम एकादशी के दिन मंत्र नहीं गायन करते हैं, क्यों नहीं पूरा मंत्र गायन करते, उसमें अन्न शब्द आता है, स्वप्रसाद अन्न ये आ जाता है, इसलिए पूरा मंत्र नहीं गायन किया जाता। और कुकिंग करने वाला क्या पूछता है, प्रभु जी समा चावल है कि नहीं, यहाँ मंत्र आपने नहीं गायन किया। अगर कोई बिना मंत्र गायन किए प्रसाद का सेवन करता है, पद्म पुराण में कहा जाता है राक्षस भोजी माना जाता है उसे। बिना मंत्र का उच्चारण किए यदि कोई प्रसाद का ग्रहण करता है तो, यहाँ मंत्र गायन नहीं हुआ, अन्न शब्द आता है, और वहाँ समा चावल के मांग रहे हैं, वह भी मना है। फिर किसी ने प्रश्न किया, फिर इसका संगति कैसे बैठेगी, हमने कहा देखो प्रभुपाद जी ने जो किया है जो कहा है वो अन्याय कभी नहीं हो सकता, वो न्याय पूर्ण है। आपको संगति बिठाना है, आपको उचित रूप से समझना है कि प्रभुपाद जी ने यह नियम क्यों बनाया। कंकावार लोग भक्त भी ऐसे होते हैं, खुद गलतियां करते हैं और गुरु वैष्णव के नाम पर बोल देते हैं, कहते गुरु महाराज ने ऐसा कहा, गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा। महाराज यद्यपि महाराज ने ऐसा कहा है, गुरुजी ने ऐसा आज्ञा दिया है, परंतु उसका उचित संगति बिठाना चाहिए। महाराज ने ऐसा क्यों कहा, गुरुजी ने आचार्यों ने ऐसा क्यों कहे हैं? तो कहने लगे, तो हमने कहा पढ़िए लीलामृत, यह साबूदाना इत्यादि ये तो पाश्चात्य देशवासियों के लिए ही बनाया गया है, उन लोगों के लिए। वो लोग कहने लगे कि नहीं स्वामी जी, हम एकदम ऐसे फलाहार करके नहीं रह सकते, रोज इतने खाने पीने वाले हम कहां फलाहार इत्यादि करके रह सकते। ये उनके लिए था, पाश्चात्य देशवासियों के लिए। जैसे हरेक वैष्णव का नियम होता है 100,000 नाम जप करना, 100,000 नाम 64 माला की विधि है, परंतु प्रभुपाद जी ने जब 64 माला की विधि बताई तब पश्चात वासियों ने उन लोगों ने मना कर दिया, बोले स्वामी जी हमसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने कहा 30 माला 32 माला तो वो भी नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है 16 माला करो, और कंप्रोमाइज नहीं, कम से कम दिन में 26,000 बार कोई व्यक्ति सांसे लेता है, कम से कम हरेक सांसे के साथ एक नाम तो जुड़ जाए, हरेक सांस के साथ एक नाम तो जुड़ जावे, 26,000 बार नाम हो जाए 16 माला में, और कंप्रोमाइज नहीं। तो एकादशी जितना महत्वपूर्ण है द्वादशी उसे अधिक महत्वपूर्ण है। और एकादशी व्रत पालन करते थे एक बड़े संत है, जब आज कम समय दिया गया है, हमें पहले से कह दी गई मीटिंग है कम समय, तो सुनिए। एकादशी आपके महाराष्ट्र में एक संत थे नामदेव जी, वो कैसे पालन करते थे। नामदेव जी के वहां एकादशी व्रत ऐसे पालन होता था, एकादशी के दिन पूरा निर्जला रहते थे, फुल जागरण रहते थे, और पूरे दिन रात्रि 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन होता था। यह होना चाहिए एकादशी को, फुल कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए एकादशी। और कीर्तन हुआ करता था द्वादशी के दिन, संतों को बुलाते थे, लंगर चलता था, भंडारा होता था, उसके बाद में सबको जिमाने के बाद नामदेव जी स्वयं पाते थे एकादशी को। और एक बात सुनिए आप सब वैष्णव लोग, हमसे गलती होती है इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, दूसरों को देना भी नहीं चाहिए। कभी कभार हम कहते ये प्रसाद है, अन्न प्रसाद खराब हो जाएगा तो हम तो नहीं खाएंगे, इन्हें दे दो, वॉचमैन को दे दो, नौकरों को दे दो, नहीं, जो देता है उसका भी एकादशी खंडित तो होता है। स्वयं अन्न ग्रहण करने से जितना पाप है उस दिन समस्त पाप, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, मातृ पितृ हत्या, समस्त पाप अन्न में निवास करता है, चाहे महाप्रसाद ही जो ना हो। तो ताली बजाने की कोई बात ही नहीं, इसमें ताली क्यों मारते आप, ताली मत मारिए, कोई भाषण थोड़े हो रहा, ताली ये सब चल गया है, मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो वह अन्न उस दिन अन्न में समस्त पाप निवास करता है। और एकादशी को जो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, दूसरों को प्रेरित करते हैं, दे देते हैं, एक प्रकार से प्रेरित ही माना जाएगा, आपने अन्न दिया तो उतना ही पाप लगेगा, देना भी नहीं चाहिए दूसरों को। प्रश्न उठता है प्रसाद है प्रभु जी खराब हो जाएगा, क्यों, फ्रीज नहीं है, वह भी यदि सुविधा नहीं है धूप में सुखाए, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ में वर्णन करते हैं, धूप में सुखावे दूसरे दिन उसे ग्रहण करे, ये भी दिए देना नहीं चाहिए। नामदेव जी के वहां पंडरीनाथ भगवान स्वयं, प्रियादास जी अपने टीका में वर्णन करते हैं, पंडरीनाथ भगवान स्वयं एक 80 वर्ष के वृद्ध के रूप धारण करके, बुढ़ापा का रूप धारण करके नामदेव जी के पास आए, इनकी एकादशी निष्ठा के ऊपर परीक्षा लेने के लिए। नाम भगवान तो नाटकी है ही, कभी बूढ़े बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी नारी बन जाए, उनकी मर्जी। तो ठाकुर जी पंडरीनाथ जी एक 80 वर्ष के वृद्ध बन करके आ गए और एक नामदेव जी के समक्ष आए, कहने लगे नामदेव जी एकादशी के दिन कीर्तन चल रहा है खूब बढ़िया से भक्त समाज में, नामदेव जी हमें कड़ी चावल खाना है, और जाओ जल्दी से शीघ्र से कड़ी चावल बना के लाओ, आप बड़े संत सभी हो हमने सुना, आप कड़ी चावल बनवा के लाओ। तब नामदेव जी ने कहा महात्मा जी बाबा आज कड़ी चावल नहीं मिले, वो नहीं मिलने वाला है, क्यों, ना आज एकादशी है। बोले अरे एकादशी तो 5 वर्ष की बात में लागू होता है, 80 वर्ष तक, 5 वर्ष से पहले 80 वर्ष के बाद में एकादशी नहीं लागू होता, ऐसे शास्त्र में बताया गया है, अगर ना भी करना चाहे बूढ़े लोग तो भी चलेगा, और 5 वर्ष तक लागू नहीं होता, उसके बाद में लागू हो जाता है। बोले क्यों, तो उनके बाद की बात है, और मेरा 80 वर्ष पार कर चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कड़ी चावल खवाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोले कि नहीं बाबा, आप यदि ये दुराग्रह करते तो दूध दही ले लीजिए, अभी हम मंगाते हैं दूध दही। बोले कि नहीं, दूध दही हमें ऐसे बुढ़ापा आ गया है, सर्दी खांसी होती है, दूध दही नहीं लेंगे हम, कब जम जाएंगे। तब नामदेव जी ने कहा तो फलाहार कर लीजिए, मंगाते हैं फल, भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, पंडरीनाथ जी को फलाहार ग्रह। बोले कि अरे नहीं नहीं, हमें खांसी होती है, सर्दी पकड़ा हुआ है, वो फलाहार नहीं करेंगे, हमें तो कड़ी चावल खा। बोले बाबा कुछ भी हो जाए कड़ी चावल नहीं मिलने वाला। बोले अरे, लोग भी कहने लगे अरे महात्मा जी, एक नामदेव जी चलो बूढ़े आदमी है, कम से कम जिमा दो इन्हें कड़ी चावल। बोले कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम एकादशी को अन्न स्पर्श नहीं करेंगे, न खवाएंगे। तब ठाकुर जी ने कहा, बाबा ने कहा देखो नामदेव जी, यदि आप हमें कड़ी चावल नहीं खवाएंगे तो हम यही मर जाएंगे, तुम्हारे द्वार पर मरेंगे। नामदेव जी ने बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले कि इससे बड़ा सौभाग्य की दिन और क्या होगा, आपके शरीर ऐसे ही जर्जरा हो गया है और आज एकादशी के मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त आपको कहाँ मिलेगा। महाराज उसने बोले अरे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगा, बोलेगा वो बोले एक नामदेव जी मुझे वह भी मंजूर है, ब्रह्म हत्या लगेगा चलेगा परंतु हम आपको अन्न नहीं। और लोगों ने कहा कि ये कैसे नामदेव कैसा संकीर्तन करता, कैसा एकादशी खास एकादशी करता, लोगों ने मारा खूब निंदा किए। नामदेव जी ने कहा कुछ भी हो जाओ नहीं। महाराज देखते देखते भगवान वो जो बूढ़े बाबा थे देखते देखते चक्कर खा के गिर पड़े, सांसे रुक गया। नामदेव जी ने नाक में रुई धर के देखा वो महाराज वो तो है ही नहीं और होश प्राण। बड़ा प्रसन्न हुए, नामदेव जी ने कहा कि ठीक है अब तैयार करो सब संस्कार करेंगे। और महाराज ठाकुर जी को सब लोग आली दे रहे थे नामदेव जी को, आखिर बूढ़ा मर ही गया और ये संत बनता है, उनको कड़ी चावल दिया ही नहीं, दे देता तो क्या होता, अरे प्राण से ज्यादा तुम्हारा धर्म होता है क्या। बेचारा बूढ़ा आदमी अगर कड़ी चावल खा के जी जाता उससे पहले बाबा को भी लोगों ने बुलाया, बाबा बाबा चलो हमारे वहाँ हम एकादशी नहीं करते, हमारे वहाँ जिम लीजिएगा। बाबा ने कहा कि नहीं हम खाएंगे तो नामदेव के यहाँ ही खाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वो बोले कि महाराज जैसे ये यही हट लगा बैठा है और नामदेव जी ने भी हट लगा रखा है कि हम नहीं देंगे कड़ी चावल। महाराज वहां से चले गए, बाबा गिर पड़े मूर्छित हो गए मर ही गए। पंडितनाथ लीला था राहु जी चले गए शरीर छोड़ दिए। वो महाराज अब उन्हें उठाए, उनका अर्थी तैयार किए, श्मशान ले गए, वहां जलाने ही वाले थे और अर्थी पर रखा गया और आग लकड़ी इत्यादि साध करके जैसे आग चेता दी गई तुरंत आग जैसे जलने लगा। और सबके देखते देखते नामदेव जी ने भी उस आग में प्रवेश कर गए। सब सोच रहे थे कि नामदेव जी ऐसे ही निष्ठा करता है। नामदेव जी ने कहा कि भैया हमारे करण बाबा के देह छोटा है, हमने इनको कड़ी चावल नहीं दिया, इसीलिए अब ये देह भगवत सेवा के लायक नहीं रहा, अब हम भी यहीं इस आग में प्रवेश कर रहा हूं। यह कहते हुए सबके सामने सभी समाज के सामने खड़े खड़े उस आग में नामदेव जी भी प्रवेश कर गए। प्रियादास जी वर्णन करते हैं और जैसे वो आग में प्रवेश किए झट से पंडरीनाथ उस आग से बुद्ध बाबा थे पंडरीनाथ से आग से झट से उठे, लकड़ी वगड़ी फेंक करके और नामदेव जी को छाती पे लगा करके सीधे बाहर कूद पड़े, जिसे गोविंद कूद पड़े बाहर। और तुरंत सबके सामने देखते देखते पंडरीनाथ चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए और नामदेव जी को अपने वक्षस्थल पर लगाया और सबके सामने ये कहा नामदेव जी मैं तुम्हारे एकादशी व्रत का निष्ठा देखने के लिए आया था, परीक्षा करने आया था तुम्हारे एकादशी के प्रति कितनी निष्ठा है, तुम्हारे जैसे एकादशी के प्रति निष्ठा रखने वाले का मेरा धाम का द्वार तो हमेशा खुला है। तो एकादशी का दूसरे दिन द्वादशी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका एकादशी ठीक से पालन नहीं होता वो द्वादशी के दिन एकादशी कर सकता है, यहाँ तक वर्णन है। तो ऐसे पवित्र दिवस पर आज हमें एक परम संत के विषय में हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में, जितना भी थोड़े बहुत समय है भगत राज प्रहलाद के विषय में यहाँ पे श्लोक लिखा है, इतना विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, 15-20 मिनट आधा घंटे के समय बहुत कम समय दिया गया है। तो जितना भी हो सके संभव उतना सुनिए। प्रहलाद इनके लिए ठाकुर जी का प्रागत्य हुआ। प्रहलाद जी कैसे भक्त थे आपको परिचित कराने की इतना आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि आप सब विद्वान जन है, ज्ञानी जन है, गुणीन जन है, सब सुनते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, आपको पता है वो प्रहलाद कैसे थे जिनके लिए हमारे भगवान स्वयं नरसिंह देव खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। आने वाला 2 दिन के बाद में नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस है, मंगलवार को है ना 13 तारीख को, चतुर्वेशी। तो ठाकुर जी उस भगत राज के लिए प्रकट हो गए। तो प्रहलाद, प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद शब्द का अर्थ यह है जो कभी उद्विग्न नहीं होता, जो सदा प्रफुल्ल रहता है, प्रसन्न रहता है, उसको प्रहलाद कहते हैं। जो आनंद में रहता है, किसी भी परेशानी का उसे एहसास नहीं होता, किसी के बात का, व्यवहार का, वाणी का जिसको कोई कष्ट न पहुंचा, कोई अनुभव न हो कि ये हमारे साथ गलती कर रहा है, प्रहलाद कहते हैं। सदा जो प्रसन्न रहे, जिसका एक लक्ष्य हो, एक मत हो भगवान की प्राप्ति, उसको प्रहलाद कहते हैं। आप सभी ने सुना, पढ़े हैं। प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट आया, कोई गिनती है? अनगिनती कष्ट आए प्रहलाद के जीवन में। देने वाला उनका पिताजी थे। एक से एक कठिनाई, एक से एक पीड़ाएं उनके जीवन में आया। वो एक ऐसा भक्त है महाराज, दूसरे भक्त के जीवन में भी कठिनाई आई है, कष्ट आया है कुंती के जीवन में, पांडवों के जीवन में, मगर प्रहलाद के जीवन में जितना कष्ट आया है शायद दूसरा कोई एक ऐसा संत नहीं, पुराण में वर्णन है उसके जीवन में इतना कष्ट आया हो। वो भी 5 वर्ष के बालक, अरे अस्त्र के शस्त्र के द्वारा उसे काटने का प्रयत्न करना, पहाड़ के चोटी से नीचे घेर देना, जल में डुबो के रखना, सर्प के कुंड में, तालाब में छोड़ देना, जहर का पिलाना, भूखे प्यासे कोठरी में डाल देना, क्या नहीं किया गया उनके साथ। परंतु कहीं ऐसा आपने सुना किसी प्रसंग में, किसी संत से, प्रहलाद जी को जब कष्ट आता था तो कभी उसने त्राही माम, पाही माम, बचाओ हरी, ऐसा कोई शब्द सुना? प्रहलाद जी एक ऐसे भक्त थे, ऐसे अवलौकिक भक्त थे जिनके जीवन में अनेक दुख विपदाएं आने को उपरांत भी उन्होंने एक बार ऐसा नहीं कहा कि पाही माम, हे कृष्ण कितना दुख दोगे, क्या मैंने बिगाड़ा था, जबकि दूसरे भक्तों ने प्रार्थना किया है। द्रौपदी ने भी प्रार्थना किया है महाभारत में वस्त्र हरण के समय, यत गोविंदे तिच्छु प्रोषा कृष्ण माम दुरवासिनम रण में तत्प्रवृधो में हृदयाम अपसर्पति। द्रौपदी ने पांडव गीता में श्लोक कहा है। द्रौपदी ने ठाकुर जी पुकारा गोविंद कह करके, हे गोविंद अब हमारे सखी के दास लाज बचा लो, उन्होंने भी पुकारा। पांडव ने भी पुकारा, हरवार विपत्ति में स्मरण किया। परंतु प्रहलाद ही एक ऐसा भक्त है, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हरि हमें बचा लो, पाही मंत्र ही मंत्र, नहीं, वो सदा सर्वदा कुछ भी उनके साथ होता रहे बड़ा प्रसन्नता के साथ भगवान नाम का संकीर्तन में, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। प्रहलाद जी ने सदा सर्वदा भगवान नाम का स्मरण किया, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया था, महामंत्र का नहीं था। परंतु प्रहलाद जी कभी भी ऐसा नहीं प्रार्थना किया है, उसको कहते प्रहलाद, जो कभी उद्विग्न न होए उसको प्रहलाद कहते। और आज हम सभी कैसे हैं? आज संसार के हर एक प्राणी कैसा है? थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे तनाव हो जाती है। प्रहलाद की जैसा अगर कष्ट हमारे जीवन में आ जाए, कोई वैष्णव ने थापड़ मार दिया, घर गृहस्थी में थोड़ी सी कुछ हो गया, ओ महाराज जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में, सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्राहात, सदा समह उद्विग्न, सम्यक रूपेण उद्विग्न। ये संसार में, संसार के संस्कृति चक्र में जितने लोग पड़े हुए हैं ये सभी उद्विग्न रहते हैं, और उसमें सद्ग्राहात ध्याम, उसमें जो गृहस्थ जीवन में है वो तो अंधकूप में गिरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति आज संसार में उद्विग्न रहता है, कितना परेशान रहता है, कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझते। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से परेशानी है, तनाव में है, चिंता है, परंतु प्रहलाद जी को ऐसा कुछ नहीं था। वास्तव में घर गृहस्थी एक बहुत बड़ा जकड़ है। शास्त्र के अंतर्गत के अनुसार जो बताया जाता है, गृहस्थ जीवन में से ऐसा आसक्ति उत्पन्न होता है महाराज, जो गृहस्थ है उन्हें पता होगा, एक एक रुपया के प्रति, नारी के प्रति, बालकों के प्रति कितनी आसक्ति उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है, बुरा मत मानिएगा, गलत न लीजिएगा बात को। यहाँ पे बताया जाता है घर गृहस्थी एक प्रकार से एक अंधकूप की तरह है। अब इस अंधकूप से निकलना है, कैसा अंधकूप है वर्णन करते हैं। जैसे कि मानो जंगल में एकांत में एक जगह एक कुआं हो, वो भी सूखा हो, वर्षों से किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे एक कुआं है, और बड़े बड़े घास से कुआं के ऊपर की हिस्सा ढक गया है, और कोई अनजान व्यक्ति उस कुएं में गिर गया हो, बहुत गहरा कुआं हो, आसपास में कोई घर ना हो, गांव भी ना हो, अब उस कुआं में गिर करके वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, परंतु किसी के पास इसकी आवाज ही नहीं पहुंच रही, तो बचाएगा कौन। तो घर गृहस्थी ऐसे ही है। परमाराध्य वंदनीय गुरु महाराज राधाकुंड गोस्वामी महाराज कहते हैं कि घर गृहस्थी ऐसा है, एक ऐसा कैदी खाना है, चारों तरफ चारों गेट खुला है, चारों गेट खुला है गृहस्थ जीवन में, कोई बंधन नहीं है, चारों गेट खुला है, फिर भी वो चाहते हुए भी उसको कैदी खाना से बाहर जा नहीं पाता, निकल नहीं पाता, और जगह जगह जेल खाना बनी है, कैदी खाना बना है। आपने सुना है गेट खुला है कैदियों को रख करके? नहीं, खूब बढ़िया से ताला लगा दी जाती है, पहरेदार वहां पर ड्यूटी करता है, फिर भी पता चलता कैदी फरार, कैदी भाग गया। परंतु ये घर गृहस्थी ऐसा है, एक ऐसा कैदी खाना है, इसमें कोई पहरेदार नहीं है, कोई गेट नहीं है, लॉक नहीं लगा है, चारों गेट खुला है, बीच में कैदी बैठा है, परंतु फिर भी नहीं जा पाता। हम आप सभी को रामायण का स्मरण हुआ रहा है, रामायण के एक प्रसंग, रामायण में सुग्रीव जी की कथा। सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर जब रहते थे, भगवान श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी जब प्रिया जी को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत तक पहुंचे, सुग्रीव जी के साथ उनका मित्रता हुआ ठाकुर जी का। अब सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु मेरा भी वैसे ही हालत है जैसे आपका है, मेरे पत्नी को और मेरे राज्य से मेरे भाई बाली ने मुझे निकाल दिया है, आप कृपा करके मेरा राज्य मुझे वापस करवा दीजिए, किष्किंधा का राजा मुझे बना दीजिए, मेरे पत्नी का वापस करवा दीजिए मुझे। ठाकुर जी ने कृपा किया, भगवान रघुनाथ जी के आशीर्वाद से सुग्रीव जी को बाली मर गया, बाली का वध किए ठाकुर जी ने, और सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजपद प्राप्त हुआ, उसको अपना पत्नी भी मिला। परंतु बाद में क्या हुआ, उन्होंने ये कहा था सुग्रीव जी ने कि मैं आपके पत्नी को, जानकी जी को, माता जी को ढूंढने में मदद करूंगा, मेरा काम पहले करवा दीजिए। ठाकुर जी ने उनका काम करवा दिया, और सुग्रीव जी को जब राजपद प्राप्त हो गया, सुग्रीव जी एक बार भी मिलने नहीं आए ठाकुर जी से। चार महीना व्यतीत हो गया, कितना दिन, कम से कम एकादशी की एकादशी तो दर्शन करने आ जाते रघुनाथ जी के, भगवान कोई दूर भी नहीं थे, वही पास के कंदरा पर रहते थे, पास में ही रहते थे ठाकुर जी, किष्किंधा के नजदीक रहते थे ठाकुर जी। एक दिन रघुनाथ जी ने स्मरण किया सुग्रीव जी को, क्या कहा? कहते हैं सुग्रीवहु श्रुधि मोरी बिसारी पावा राज कोश पुरनारी। एक दिन ठाकुर जी ने स्मरण करके कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, मेरे मित्र सुग्रीव तो मुझे भूल गया, पावा राज कोश पुरनारी, अपने गृहस्थ जीवन पा करके, घर गृहस्थी को पा करके, पत्नी को पा करके, राजकोष पा करके, मेरा सुग्रीव मुझे भूल गया। ठाकुर जी का क्या शब्द देखिए, सुग्रीव हूँ मोरी बिसारी सखा मोरी सुग्रीव। ठाकुर जी ने कहा सुग्रीव मेरा मित्र है, देखिए एक बार जो हमारे प्रभु को पकड़ लेता है, एक बार जो गोविंद के सामने कहता प्रभु मैं आपका हूँ, हृदय से जो कहता है ठाकुर जी से शरणागति होकर के, प्रहलाद की तरह जो एक बार दिल से भगवान से कहता प्रभु दास आपके चरणों में प्रणाम करता है, मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हो भगवान, अगर उसके बाद में आप भगवान को भूल भी जाते हैं, एक बार कहे हो ना, भगवान आपको नहीं भूलते, भगवान हमें नहीं भूलते, इतनी प्रेम करते। सुग्रीव भूल गया, चार महीना व्यतीत हो गया कि हमें भगवान की पत्नी का तलाशी करना है, प्रिया जी को ढूंढने मदद करनी है ठाकुर जी का, परंतु भगवान को याद करना पड़ा, सुग्रीव हूँ मोरी बिसारी, सुग्रीव मुझे भूल गया, पावा राज को सुपुर नारी। यह तो स्वभाव है, घर गृहस्थी में जैसे व्यक्ति जाता है मुझे भूल जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा भ्राता श्री, भैया अब वो रास्ता, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अब वो रास्ता बंद नहीं है जिस रास्ता में बाली गया है, यानी कि मारने पिटने वाला, बाली को जैसे मार दो, बोले कि वो रास्ता अभी बंद थोड़े हुआ है, अब बताओ, अभी मैं जाकर उसे ठिकाने लगा के आता हूँ। रघुनाथ जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उसे डांटना मत, देखिए रामचंद्र जी कैसी प्रेम है, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, नहीं नहीं उसे डांटना मत, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसे डांटना मत, कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे जाते ही तुम्हारे डर से भाग जाए, यहाँ तक ये गोस्वामी जी ने वर्णन किया, यदि तुम्हें देख करके सुग्रीव भागने भी लग जाए उन्हें पकड़ करके ले आना, जाने मत देना, क्योंकि सुग्रीव हूँ मोरी सखा, मेरा सखा है वो। क्या प्रेम है भगवान की, क्या वात्सल्य है भक्तों के प्रति, इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहते हैं। तो ठाकुर जी ऐसे परम भक्त प्रहलाद के चरित्र है। प्रहलाद जी एक दिन की बात ऐसा है, प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में बिठाया, सब जानते हैं हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, द्वादश महाभागवत में इनका नाम आता है। एकदा सुरासुरात पुत्रम अंकम आरोप्य, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को प्रहलाद को अपने अंक में लिया, गोद में लेकर के पूछा वत्स मन्यते साधु मत भावम, हे पुत्र हे प्रहलाद, मैंने सुना दास दासियां बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, तुम कोई बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हो, जरा मेरे को भी बताना तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुमने क्या सीखा है, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। वो सोचता था प्रहलाद हिरण्यकशिपु, जो हमारे असुर विश्वविद्यालय में हमारे दोनों गुरुजी के शिष्य पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं असुर विश्वविद्यालय में, असुर पाठ क्या होता है, विपक्ष को कैसे हराना है, कैसे साधु संत को कष्ट देना है, ये असुर विद्या है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा ही कोई बातें करेगा, परंतु प्रहलाद जी ने कहा यही वाला श्लोक, जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी तत् साधु मन्ये असुर वरिय दही नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमंध कोपम बनम गतो यद हरिम आश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, पिताजी भी नहीं कहा, कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, हे महाराज हिरण्यकशिपु, क्या शब्द उपयोग किए। पिताजी बड़ा खुश है कि कोई बात नहीं, कम से कम राजा कहकर के कुछ अच्छा मतलब सीख रहा है। अब जब राजगादी पर पिताजी बैठा तो थोड़े पिताजी होता है, जब जज जस सीट पर बैठता है तो उस समय बेटा वहां पिताजी कह करके नहीं कहेगा, जस शायद ये कह करके कहेगा। तो चलो अच्छा है, ज्ञान हो रहा है बेटे को। हे असुर श्रेष्ठ तत्ताद मन्य असुर वरियत ही नाम, हे असुर श्रेष्ठ महाराज हिरण्यकशिपु, हमने तो अपने साधु भाव से अपने बुद्धि से जो भी कुछ विचार किया है, हमें ऐसा लगता है ये घर गृहस्थी, ये संसार के संसृत चक्र वैसा है जैसे अंधकार के कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, ऐसा ही ये घर गृहस्थी है। बड़े संसार में हरेक व्यक्ति उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। तो तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या विचार है? प्रहलाद ने कहा हमारी विचार तो यही है, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। वनम गतो, वन में चले जाना चाहिए। वनम वृंदावन नामम, वो भी वृंदावन जाना चाहिए, वहां जाकर के हरि के आश्रय लेना है। इतना जब सोना हिरण्यकशिपु के खून खलने लगा, परंतु गुस्सा नहीं प्रकट किए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आधा तो मेरे प्रसन्नता के अनुसार कहा, आधा अपने प्रसन्नता अपने हिसाब से कहा। उतारा गोद से और दोनों शिष्यों को, गुरु पुत्रों को बुलाया, चंड अमरक को कहा कि क्या पढ़ाए हो इसे, ये क्या उत्पटान बोल रहा है, मेरे हत्यारे की शरण लेने का बातें कर रहा है ये छोरा, ये क्या सिखा दिया तुमने? अब तो दोनों चंड अमरक कांपने लग गए, बोले महाराज हमने नहीं कुछ सिखाया, सच कह रहे हैं हम। बोले अच्छा ये फिर कहां से सीखा? बोले पता नहीं। बोले कि ध्यान रखो, छद्मवेशी साधु छद्मवेश में आकर के वहां सिखाते होंगे, ध्यान रखो, कड़ी नजर दो, कोई ना आ पावे, मेरा पुत्र बिगड़ रहा है। अरे अब ऐसे कह करके संड अमरक को भेज दिए, संड अमरक ने लिया, खूब फिर पढ़ाए, खूब पीछे प्रहलाद को, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन प्रहलाद जी आए, कई महीनों के बाद में दोबारा घर पर आए, फिर एक बार उन्होंने पूछा, अब अंक में लेकर के क्या पूछा? प्रथम बार तो ये पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तब प्रहलाद जी ने कहा यही अच्छा लगता है, वन में जाकर के हरि के आश्रय लेना है। दूसरी बार हिरण्यकशिपु ने दूसरा प्रश्न किया, ध्यान रखें, दूसरा प्रश्न किया कि पुत्र अब के बार तुमने अपने गुरु से अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान क्या सीखा? ऐसा जब प्रश्न किया, प्रहलाद ने स्मरण किया अपने गुरु का। प्रहलाद ने कहा गुरु का अर्थ तो होता है गुकार अंधकारत्वम रूकार संयरोधक, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। गुरु का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और मेरे गुरु संडमर्ग तो ऐसा है प्रकाश से अंधकार में ढकल दे महाराज। गुरु शब्द तो इनके ऊपर उपयोग होता ही नहीं, तो अपने परम प्रिय आदरणीय जो मातृगर्भ में सीखे थे और नारद जी से जो सीखे हुए थे, उन परम दिव्य गुरु का उन्होंने स्मरण किया कि गुरु से हमने जब क्या सीखा है, यदि आप पूछ रहे हैं पिताजी तो सुनिए हम गुरु से क्या सीखा है। उन्होंने कहा गुरु से हम यह सीखे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणम। उन्होंने नौ प्रकार के भक्ति के विषय में बता दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण। और इतना सुनते हिरण्यकशिपु के खून खल गया, तुरंत पुत्र को अंक से फेंक दिया, प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और तुरंत कहा कि मेरे आंखों के सामने मेरे शत्रु को हटा लो यहां से और लेकर के इसका कत्ल कर दो। देखो कैसे पिताजी, कहा कि इस दुष्ट का कत्ल कर दो जो मेरे भाई का हत्यारा बना, हमारे कुल का वंश का जो हत्यारा एक एक करके जो हत्या करता रहा, उस विष्णु का ये जयगान कर रहा है। प्रहलाद जी को लेकर के खूब मारे पीटे, खूब कष्ट दिए। संड अमरक ने ले गए गुरुकुल में, खूब पीटे। संड अमरक नाम भी कैसा देखिए, संड अमरक असुर विश्वविद्यालय का गुरु थे वो। नाम जैसा काम भी ऐसा ही था इनके, संडम रख। नाम अच्छा रखना चाहिए अपने बालकों का, चिंटू पिंटू मुन्नू टुनू नहीं रखना चाहिए। नाम रखे तो भगवान के नाम रखे, गृहस्थों को चाहिए, ताकि भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। चलो नाम जो भी हो, गुण होना आवश्यक है। एक कथा हम संस्कृत में पढ़ता था, जब ब्रज में पढ़ता था भागवत बाबा जी के आश्रम में, संस्कृत में कथा पढ़ा था। एक कुरकुची करके एक ब्राह्मण था, कुरकुची नाम था उसका, पंडित जी का नाम था कुरकुची। पंडित जी बड़ा अच्छा कथा कहते थे और दीक्षा भी देते थे, अच्छा अच्छा नाम देते थे, मगर खुद का नाम था कुरकुची। अब पंडितानी रोज झगड़ा कर दी थी इस नाम के ऊपर, रोज गाली गुलाज होता था, क्या ये कुरकुची करके नाम रख रखे हो, कोई अच्छा नाम तो कम से कम रख लेते अपना, क्या ये नाम, ये मेरे को नहीं, जब तक ये नाम आपका रहेगा तब तक मैं लड़ती रहूंगी। पंडितानी ने कहा, अरे महाराज, पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं देखते हैं। घर से निकल गए पंडित पंडितानी, रास्ते में जा रहे थे तो एक सब जा रहा था, मुर्दा जा रहा था, अर्थी जा रही थी। पंडित जी ने पूछा, ये कौन मर गया, ये कौन जा रहा है, मरा हुआ व्यक्ति का क्या नाम है? तो किसी ने कहा, ये अमर सिंह है, अमर सिंह जी का मृत्यु हो गया है। अब पंडित जी ने कहा, ओहो। आगे गए तो एक भार वाहक जा रहा था, जैसे कावड़ लेके चलते हैं ना, कावड़। एक ऐसा एक आदमी जा रहा था अपने कांधे पर कावड़ी की तरह भार उठा उठा करके जा रहा था। तो पंडित जी ने उनसे पूछा, भैया आपके नाम क्या है? उन्होंने कहा, हमारे नाम है कुबेर। अब उन्होंने कहा, हमारे नाम कुबेर। पंडित जी ने कहा, अच्छा है। आगे गए, देखे एक माता जी दुनिया भर के बर्तन मांज रही है किसके घर के बाहर। उससे पूछे, माता जी आपके नाम क्या है? माता जी ने कहा, पंडित जी हमारे नाम है लक्ष्मी। अब जब ऐसे पंडित जी ने सुना, पंडित जी जाकर के दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पंडित जी ने कहा, अमरम च मृतम दृष्ट्वा कुबेर भारवाहकम लक्ष्मी पर गृहे दासी सुखी जीवती कुरकुची। उन्होंने कहा, देवी पंडितानी देख ली, अरे मेरे पिताजी ने मेरे नाम कुरकुची रखा है, बहुत अच्छा है। अब देख ली, अमरम च मृतम दृष्ट्वा, नाम तो है अमर सिंह और मर करके अर्थी बना हुआ है, अमर सिंह जी का मृत्यु हो गया, मर गए। कुबेरम जो धन के अधिष्ठात्री राजा है वो भार ढो रहे हैं, लक्ष्मी दूसरे के घर पर बर्तन मांज रही है, तो सुखी जीवती कुरकुची, मैं तो सुखी हूं, कुरकुची ठीक है। माता पिता के द्वारा नाम, गुरु के द्वारा दी हुई नाम कभी भुलाना नहीं चाहिए, स्मरण रखना चाहिए जो भी नाम है। संतो कहने का तात्पर्य यह है, प्रहलाद के जीवन में अनंत दुख आया, बहुत दुख आया। नरसिंह पुराण में वर्णन किया जाता है, कई बातें हम स्मरण करके आया था, नरसिंह पुराण से कहने का समय अभाव के कारण नहीं कह पाएंगे। तो ऐसे प्रहलाद के जीवन में बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, परंतु प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान का विस्मृति नहीं किया। आज हम आप सब ऐसे इतने उद्विग्न रहते हैं, शांति से दर्शन भी नहीं कर पाते, शांति से भगवान के भजन भी नहीं कर पाते। लोग वृंदावन जाते हैं भगवान के दर्शन करने, कृष्ण बलराम में दर्शन करते, झट उठ कर वहां से राधा दामोदर, वहां से फट गए, प्रणाम किए, पीछे से पीछे के रास्ता से राधा रमन, वहां से फिर फट से बस पंचांग प्रणाम, फट से फिर वहां से निकले बरसाना, वहां से मन मंदिर में दर्शन करके, दीदी के प्रांगण में दर्शन करके, झट से फिर वहां से आए गोवर्धन, देखते देखते फिर राधा कुंड श्याम कुंड, भगवान भी हैरान हो रहे, यार ये कहाँ है, कभी तो बरसाना, अभी तो यहाँ था, बरसाना में देखते देखते यहाँ गोवर्धन में, ये तो मेरा बाप निकला। अरे कहने का मतलब है कम से कम शांति से तो एक जगह जाके दर्शन करे, शांति से दर्शन करे, बैठे स्मरण करे, ऐसा इतने उद्विग्न रहते हैं। तो प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी को खूब प्रताड़ना दी गई, अंत में होलिका ने लेकर के उन्हें गोद में बैठ गई, जल गई होलिका। तो कोई कह सकता है इस प्रकरण में बड़ा सुंदर स्मरण हो रहा है, परंतु व्याख्या करेंगे तो समय लगेगा, समय हो चुका है, इतना आज्ञा दी गई थी ऊपर से, नरसिंह पुराण का स्मरण हो रहा है। तो ऐसे होलिका ने जब लेकर के प्रहलाद को आग में बैठ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, नरसिंह पुराण में वर्णन है, प्रहलाद जी तपाए हुए स्वर्ण की तरह और चमकने लगे, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, तपाए हुए स्वर्ण की तरह प्रहलाद जी चमकने लगे, होलिका जल करके राख हो गई। हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न होने लगा, जब हम पढ़ रहा था ब्रज में, बाबा जी से हमने पूछा, महाराज ये कैसे, ब्रह्मा जी का तो वरदान प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी से वरदान मिली हुई थी कि तुम आग में नहीं जलोगे, और ये तो आग में जल गई, यानी कि ब्रह्मा जी के वरदान गया। बोले कि बेटा बात ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी के वरदान थी, ब्रह्मा जी के वरदान यह था, ये प्राकृत अग्नि में नहीं जलेगी, और प्राकृत अग्नि में नहीं जलेगी ऐसा तो वरदान नहीं था। बाबा ने एक बड़ा सुंदर दोहा हमें कहा, जो भगत अपराध कर करई, राग रोष पावक सो जरई। होलिका ने प्राकृत अग्नि में नहीं जली, वो भक्त को मारने का जो अपराध करी उस अपराध रूपी अग्नि से जल गई, वो तो अप्राकृत अग्नि था। संत को तड़पाने का, संत को दुख पहुंचाने का, गोमाता को दुख पहुंचाने का जो प्रयत्न करता है उसे कोई नहीं बचा सकता। बाद में यह बात जब सुनी गई कि प्रहलाद जी का विजय हुआ, भागवतम सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद जी का विजय उत्सव मनाया गया, बालकों ने बहुत सुंदर इनका उत्सव मनाया, खूब आनंद से कीर्तन हुआ। फिर बालकों ने प्रश्न किया छठे अध्याय में, शिवाद वाले अध्याय में, कहा कि मित्र प्रहलाद तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से सीखे, ये ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्र ये ज्ञान मैंने अपने माता के गर्भ में सीखा था। सारे बात उन्होंने कहा, जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, असुरों ने, देवताओं ने असुरों को आक्रमण किया, असुरों को पराजित करके मेरे माता को हर करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे, नारद जी ने उन्हें डांटा फटकारा, फिर उन्हें मेरे माता को अपने आश्रम पर लेकर के भागवत अध्ययन करवाए, मेरे माता का तो इसका स्मरण नहीं रहा, परंतु गर्भ में रह करके इसका स्मरण रखा, मैं माता के गर्भ से सीख करके आया, प्रहलाद ने कहा। फिर दूसरा श्लोक प्रहलाद ने दया का कहा। देखिए साधु जीवन में तीन गुण होना चाहिए, हमारे जीवन में, हरेक वैष्णव के जीवन में तीन गुण होना चाहिए, जैसे तीन निष्ठाएं हैं ऐसे तीन गुण होना चाहिए, ये नारद जी कहते हैं प्रथम स्कंद में। तीन गुण क्या है? प्रथम गुण है चंचलता का अभाव, यह होना चाहिए साधु जीवन में, चंचलता नहीं होनी चाहिए। ज्यादा चंचलता यदि हुआ, चंचलता ज्ञान कैसा, ज्ञान तरल वस्तु होता है। अब मानो कोई पात्र बहुत ज्यादा हिल डुल रहा हो, उसमें कब तक वो वस्तु टिकेगी? बहुत कम देर टिकेगी। चंचलता में ज्ञान कभी टिकती नहीं है, साधु जीवन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। दूसरा दंत, नारद जी कहते हैं व्यास जी से, दंत का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर संयम। तीसरा मितभाषी, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, प्रेम से बोलने वाला होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। ऐसे तो शास्त्र में बताया जाता है छह कार्य जो करता है, एक पुराणिक श्लोक है, छह कार्य जो व्यक्ति करता है उसके पास नारायण, उसको वो नारायण भी क्यों ना हो, नारायण भी छह कार्य करने लग जाए तो लक्ष्मी जी उन्हें भी छोड़ के चली जाएगी। क्या क्या है? कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहुभाषिणम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदयस्ते अस्ति विते शयानम विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी। कुचैलिनम, मलिन वस्त्र का परिधान, जो लोग मलिन वस्त्र पहनते हैं, गंदे कपड़ा पहनते हैं, लक्ष्मी उन्हें छोड़ के चली जाती है चाहे कोई भी हो। दंत मलोपधारिणम, जो दांत मार्जन नहीं करते, दांत नहीं घिसते, बरबू आता है मुझसे, उसे भी लक्ष्मी छोड़ जाती है। तीसरा गुण है, तीसरा अवगुण है, तीसरा कार्य है, जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है, आज बहुत अच्छा प्रसाद था, बहुत ज्यादा पा लिया, नहीं, जो ज्यादा भोजन करता है उसे भी लक्ष्मी छोड़ के चले, वो कभी शास्त्र का ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता, वेदांत सूत्र का वेदांत का अधिकारी नहीं बनता। काशी में एक पंडित जी है, हम गया था महाराज जी के साथ में, वो पंडित जी का वहाँ नियम है, वहाँ वेदांत पढ़ाते हैं काशी में, तो वहाँ पे उन्होंने नियम रखा है छह महीने तक कम से कम जो विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, एक तरफ दो विभाग से दो तरह मतलब दो जगह अलग अलग बैठते हैं भोजन करने वाले, एक तरफ बढ़िया बढ़िया प्रसाद परोसा जाता है, एक तरफ सूखा रूखा, उनके सामने पड़ोसी जो नए आते वो सूखे सूखे खाते, छह महीने तक उन्हें सूखे खाना है और उन्हें कुछ कहा नहीं जाता, उनको पहले ही ये वाले सीट में बिठा दिया जाता है, चाहे तो वो उसमें से इधर आके बैठ सकते हैं। अगर छह महीने के बीच में बिना पूछे अपने इच्छा से उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, उधर से इस तरफ जहाँ बढ़िया भोजन प्राप्त होता है आसन लगा दिया, गुरु जी कहते बेटा तुम वेदांत के अधिकारी नहीं हो, घर चले जाओ, घर भेज देते महाराज, पढ़ाते नहीं है, ऐसे ज्यादा भोजन नहीं करना है। तीसरी बात है, चौथी बात है मितभाषी निष्ठुर वचनम, कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोई कोई भक्त, कोई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कटु बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा हमें यदि हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं महाराज, हमें ठान लेना चाहिए कि हमारे वाणी से कभी किसी को कष्ट ना हो, किसी वैष्णव को, निवासी भक्तों को, या मंदिर में आए हुए अतिथिगणों को, भक्तजनों को, किसी के मन में ठेस न पहुंचे। चौथा क्या, पांचवे क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो व्यक्ति सोता है, ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा पुण्य क्षय कारिणे, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है, ऐसा नित्य कर्म पूजा पद्धति में वर्णन प्राप्त होता है। नहीं सोना चाहिए, बीमारी भी क्यों ना हो उसे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, बीमारी भी क्यों ना हो, यहां तक कहा गया सोने की विधान में। विमुंचते श्री यदि चक्रपाणि, ये छह कार्य यदि नारायण भी करते हैं तो भी उन्हें लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी, ध्यान रखना चाहिए। प्रहलाद जी के अंदर बहुत अच्छा गुण था, प्रहलाद जी सदा सर्वदा सबसे मीठा बोलते थे, स्नेह करते थे, बहुत प्रेम बोलते थे। अंत में प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इत्यादि। फिर उसके बाद में प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा कि मित्र प्रहलाद, तुम्हारे दृष्टि में भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा किसको कहते हैं, सर्वोच्च भक्ति क्या है? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वोच्च भक्ति क्या है, कहा सबके अंदर नारायण का जो दर्शन करता है, जो सबको समान रूप से दर्शन करता है, वो भक्ति का सर्वोच्च सिद्ध है। सब में गोविंद का दर्शन करना, और यह कैसे प्राप्त होता है, ये कैसे संभव है? प्रहलाद ने यह भी कहा कि तब संभव है जब भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। प्रहलाद के चरित्र बहुत सुंदर वर्णन प्राप्त होता है, आगे को आप लोग सुनते रहेंगे। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भी बड़ा विस्तार से सुनेंगे। नरसिंह देव के प्राकट्य आज करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग परसों सुनेंगे कि कैसे नरसिंह भगवान की प्राकट्य हुआ। समय होता तो छोर कहते हैं, समय भाव है, एक दीवानी को विराम करते हैं। हमसे कोई कहने में त्रुटि हुई होगी, संत लोग हमें क्षमा करेंगे, दीवानी को विराम करेंगे।
Mm-hmm.